ایسے لوگ تو دنیا میں اللہ کو فاعل لما یرید سمجھ کر اس کی بات کو مان لیتے ہیں، ان کو وہاں کیا کیا جائے گا؟ آیت 108، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو کہ خوش بخت ہوئے، نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، پھر وہ جنت میں جائیں گے، کب تک؟ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تک کہ آسمان و زمین رہیں، ہاں مگر اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر جو کہ آپ کا رب چاہے۔ کیا یہ جنت لوگوں کو ان کے اعمال پہ ملی؟ کہا بالکل بھی نہیں، عطاؤن غیر مجزوز، یہ تو ایک ایسی بخشش ہے جو کبھی کبھی ختم نہ ہوگی۔ تقابل کر کے دیکھ لیجئے، پیچھے جہنم کی آیت تھی، بات ختم کر دی، ما دامت السماوات والارض، آسمان و زمین جب تک رہیں گے، الا ما شاء ربک، دیٹس اٹ، کس نے کب تک جہنم میں رہنا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، اِنَّ رَبَّكَ فَعَلُ لِمَا يُرِيد، ایک دو ٹوک انداز تھا، لیکن ذرا جنت کے انداز میں اللہ کا انداز دیکھیے۔ پہلی بات، اُمَّ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، یہ تو بات سمپل ہے، ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ ہم کو لے جائے گا، کب تک رہیں گے؟ سیم وہی تفسیر جو مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کی جہنم کے تناظر میں ہو گئی، یہ بھی واضح ہو گئی، اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب تک آپ کا رب چاہے، اور کیا ادھر ماں من کے معنوں میں ہے، تو سمجھ لیجئے اگلے لفظ نے بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کے بعد کوئی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہاں ایک جملہ لکھ لیجئے، عقیدہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، جہنم میں داخل کیے جانے کے بعد بہت سارے لوگ اس میں سے نکالے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ معروف روایت بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کو بھی نکال لے گا، اور اس کا اپوزٹ بھی کہا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، جہنم سے نکالے جائیں گے، لیکن جنت کے معاملے میں اللہ کا قانون فرق ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ ایک بار کسی آنکھ نے جنت کی کوئی نعمت دیکھ لی، وہاں داخل ہو گیا، تو عطاؤن غیر مجزوز، پھر وہ بخشش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیے، دو طرح سے ہو سکتا تھا نا معاملہ، کچھ لوگوں نے نیکیاں کی ہوتی ہیں تو گناہ بھی کیے ہوتے ہیں، دنیا میں تو معاملہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن کچھ کے معاملے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر ان کی سزا کو پورا کر کے پھر جنت دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ قانون تو سمجھ گئے نا آپ؟ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اپنے اوپر لے کے بتاتی ہوں کہ میں نے کچھ نیکیاں کی اور میرے سے کچھ گناہ بھی ہو گئے، اور اتنے زبردست قسم کے گناہ تھے کہ جس پہ حد لگتی ہے یا جس پہ کوئی بھی سزا ملنی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہے فرشتوں، چلو جاؤ پہلے اس کو جنت میں ڈال دو، اس کو جنت دے دو، کچھ دن ذرا جنت کے مزے لے لے، پھر اس کو جنت سے نکالنا اور اس کو پھر اس جہنم میں ڈالنا جہاں اس کو ڈالنا، اور پھر جتنی دیر سزا دینی ہے پھر جنت میں نکالے، ممکن تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بندے کی فطرت کو جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا جاتا ہے کہ فقیری کے بعد شاہی گوارا ہو جاتی ہے، لیکن شاہی کے بعد فقیری نہیں برداشت ہوتی۔ غربت کے دن دیکھے ہو نا آپ نے، تو پھر آسودگی ملے تو خوشی ملتی ہے، شکر بھی نکلتا ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھے اب کیا ہو گیا، لیکن کبھی شاہی کے بعد فقیری ملے، اچھے دن دیکھے ہوں تو پھر برے دن دیکھیں تو کیا ہوتا ہے۔ اس کو مال دولت سے بھی دیکھ لیجئے، اس کو محبتوں میں دیکھ لیں، کسی کو شروع کی زندگی میں شوہر سے محبت نہ ملے، لیکن وقت کے ساتھ شوہر کو پتہ چل جائے کہ یہ کیسی ہے تو محبت مل جائے، تو عورتیں سب بھول جاتی ہیں، بلکہ اور خوش ہوتی ہیں کہ اب تو یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اگر شادی کے شروع دنوں میں تو دوپٹہ بھی آپ کا اٹھا اٹھا کے دلہا صاحب پکڑے، اور پرس بھی آپ کا پکڑے، اور آپ کے جوتے بھی آپ کے آگے رکھے، اور دو چار سال کے بعد ان کا آپ سے دل بھر جائے، اور پھر آپ سے وہ گستاخی بھی کرے اور گالیاں بھی دیں، کیسا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھ دے دیا، سزا جو دینی تھی، لیکن ایک دفعہ جب جنت مل گئی اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکل نہیں سکے۔ اس لفظ غیر مجزوز پہ بہت زیادہ تفسیریں ہوئیں، उलझ जाएंगे अगर मैं आपको सारी बता दूंगी तो। लेकिन अगर इसमें हम सबसे ज्यादा देखें तो सही बात वही है जो अभी तक हो गई कि ऐसी अता है जन्नत जो कभी ख़त्म नहीं होगी। मजजूस का लफ्ज़ है ना, जुज से, जीम जाल जाल। जजाज कहते हैं अरबी जुबान में टुकड़े टुकड़े करने को, जड़ से काटना। गैरा मजजूस के लफ्ज़ को अगर आप उर्दू में देखें ना तो इसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा है लाजवाल, ऐसी चीज जिसको जवाल ही नहीं है। एक दफा किसी आंख ने जन्नत देख ली तो कभी फिर उससे खत्म नहीं होगा। जन्नत अबदी है तो जहन्नम भी अबदी है। बास ने पिछली आयत और इसमें कंपैरिजन करके ये भी राय दे दी कि जन्नत तो अबदी है, जहन्नम अबदी नहीं है। एक वक्त आएगा, चाहे वो रब अरब खरब साल के बाद आए, जब जहन्नम खत्म हो जाएगी और उसके बाद सबको जन्नत मिल जाएगी। लेकिन यह अकीदा कुरान और सुन्नत से टकराता है, इसलिए ऐसी बातों पे तो खामोशी बेहतर है कि वल्लाहु आलमु बिमुरादी। गैब का मामला, यूमिनूना बिलगैब, जो कह दिया सो कह दिया, लिहाजा हम इससे ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। तो क्या पता चला कि जन्नत और जहन्नम दोनों मौजूद हैं। गैर मजजूस को आप उर्दू में एक और लफ्ज़ से भी समझ सकते हैं, गैर मकतू, ना ख़त्म होने वाली अता, ऐसी अता जो कभी ख़त्म ना हो, जिसको आप मार्केटिंग की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसी डिलीवरी जो कभी भी रुकेगी नहीं, अनएंडिंग सप्लाई। ये लिख लीजिए इसके आगे लफ्ज़, गैर मजजूस के अनएंडिंग सप्लाई। जन्नत में जो नेमतें होंगी ना वो अनएंडिंग होंगी। घर में आप कहते हैं चीनी ख़त्म, दूध ख़त्म, आलू ख़त्म, प्याज ख़त्म, जन्नत में गैर मजजूस कभी नहीं ख़त्म। यहाँ तक रिवायत में आता है कि जन्नत के दरख्तों पे जो फल लटक रहे हैं उन पे छिलका नहीं है। एक शख्स अपने तख्त पे बैठा होगा, उसका दिल चाहेगा कि फलां दरख्त का फल मैं खाऊं, बस सोच है और उस दरख्त की एक छोटी सी डाली वहां से निकलेगी और उसके मुंह को लगेगी और वो जितना फल खाना चाहेगा खा लेगा। कोई छिलका नहीं, कोई गूदा नहीं, कोई हड्डी नहीं, कोई उसमें गुठली नहीं है, कोई मोटे होने का डर नहीं। खा लेगा, जितना खा लेगा उसका दिल भर गया तो छोड़ेगा, तो वो डाली वापस अपनी जगह पे जाएगी, जितना उसने खाया होगा वो रेनोवेट हो जाएगा। गैर मजजूस, क्या वो बात है। कुछ लोगों ने तो घर में भी दुनिया में भी यही जन्नत बनाई भी है, फ्रिज से कुछ ख़त्म नहीं होने देना। एक चीज़ ख़त्म होती है भगवाते हैं मर्दों को भी और ख़ुद भी भागते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है कि ब्रेड ना हो तो हमारा नाश्ता हो जाए। दुनिया में तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि ख़त्म किया करें। एक दिन फाके का भी रखें, एक दिन बचे खुचे का भी रखें, ताकि दुनिया ही ना जन्नत बन जाए। वहाँ की नेमतें हमेशा की है और कभी ख़त्म नहीं होंगी। वहाँ अल्लाह ताला कभी ये नहीं कहेगा आजकल हाथ तंग है, आजकल कारोबार फ्लॉप है। क्या हम उस जन्नत को पाने के लिए फिर ख़त्म होने वाले अमल करें। अब सबसे अहम नुक्ता जिस पर बात करने लगी हूँ, गैर मजजूस अता को पाने के लिए अमल कौन से करने पड़ेंगे बताइए जी। गैर मजजूस, 4 दिन की नेकियां और फिर ख़त्म, 4 दिन का शौक और फिर ख़त्म, 4 दिन का जोश और जज्बा फिर ख़त्म, 4 दिन की कुरान की तालीम फिर जोश ख़त्म, फिर बस बोझ है, बस वक्त डाल रहे हैं। हर एक खुद से पूछे, क्या मेरा जोश ख़त्म तो नहीं हो गया, क्या मेरा शौक़ ख़त्म तो नहीं हो गया, क्या मेरी कमिटमेंट ख़त्म तो नहीं हो गई। देखिए हम खुद से सबसे ज़्यादा अच्छा हिसाब ले सकते हैं। दूसरे क्या करते हैं, कागज़ों पे लिखते हैं, आप तो खुद अपने दिलों पे लिख सकते हैं। नेकियों के काम जितने शौक और जज्बे के साथ करते रहेंगे उतना ही अल्लाह आपको ना ख़त्म होने वाली नेमतें जन्नत में अता करेगा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि मौत को चित कब्रे, चित कब्रा किसको कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट, थोड़ा काला थोड़ा सफ़ेद, चित कब्रे मेंढे की सूरत में लाया जाएगा और इसको ज़िबा किया जाएगा, फिर फरमा दिया जाएगा अहले जन्नत तुम हमेशा रहोगे और मौत नहीं है, और जहन्नम वालों तुम्हारे लिए हमेशगी है मौत नहीं है। उस वक्त फिर क्या होगा। और कहते हैं कि अगर उस वक्त कोई ज़िंदा होता तो जहन्नमी गम से मर जाते और जन्नती खुशी से मर जाते। आप कहते हैं कि जब सब मरेंगे ना, सबको मौत आ जाएगी, तो मलकुल मौत जिनको अल्लाह ताला ने ये काम दिया हुआ है वो अल्लाह सुबहान तला के पास आएंगे और कहेंगे, अल्लाह तला आपने मेरे जिम्मे जो काम लगाया था मैंने कर दिया। क्या क्या अब दुनिया में कोई जी रूह बाकी नहीं रहा? इंसान नहीं, जी रूह, जिसमें भी रूह है, हत्ता उसमें फरिश्ते भी आते हैं। आपको पता, फरिश्तों को भी मौत आएगी एक लम्हे के लिए जी, हत्ता के अल्लाह के अर्श को उठाने वाले 4 और उस दिन 8 जो फरिश्ते, उनको भी मौत आएगी। और उस वक्त वो अर्श को एक ख़ास जगह पे चंद लम्हों के लिए टिका देंगे। कैसे होगा? अल्लाह नोज दी बेस्ट। लेकिन ये आखिरत के मराहल, अल्लाह ताला कहेंगे सब मर गए, सबको मौत आ गई जी, तो आप कहते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? क्या अब आप अपनी भी जान लीजिए, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, मलकुल मौत को भी मौत आनी है। इसको सुन के कहते हैं कि मलकुल मौत एक जोर की चीख मारेंगे, क्योंकि उनको मौत की सख्तियों का पता है कि अगर कोई जिंदा होता तो उस चीख से मर जाता। हम किस भूल में, हम कहाँ पड़े हैं? तो हर एक को जाना है कुल्लु मन अलैहा फान। हम सब इस दुनिया में 4 दिन के लिए आए हैं और ये 4 ही दिन हमसे संभल नहीं रहे। इसी में हमारे काम देख लीजिए हम क्या करते हैं। ये है वो ना खत्म होने वाला पैगाम जो अल्लाह अपने नबी को दे रहा था। इसमें थकन नहीं हो सकती, इसमें एंडिंग कभी नहीं होती, ये चलता ही रहेगा। इसलिए अब आप देखेंगे कि अब अगली आयतों में पूरी एंड तक खिताब का रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, और खूबसूरत तरीन आयतें नबी सल्लम को तसलियां देने के नाते से कुरान पाक की। कोशिश करूंगी कि इकट्ठा पढ़ के फिर एंड पे बात करें। आयत 109, फला तकुफी मिर्यत मिम्मा याबुदु हाउलाई, बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी शक में न रहें इन लोगों के बारे में जिनकी ये लोग पूजा कर रहे हैं। यानी आप अब ये ना सोचें कि ये मुशरिक जिनकी पूजा कर रहे हैं ये ठीक ही कर रहे होंगे और शायद ये माबूद ठीक ही हों, बल्कि मा याबुदूना, ये लोग नहीं पूजा कर रहे इल्ला कमा याबुदु आबाउहुम मिन कब्ल, मगर ऐसे ही जैसे कि इनके आबा अजदाद पूजा करते रहे हैं इससे पहले। यानी ये तो लकीर के फकीर हैं। अगर इन्होंने तौहीद नहीं सीखी ना, तो इन्होंने शिर्क भी कोई नहीं सीखा। अगर इन्होंने अल्लाह का हक नहीं दिया ना, तो ये बुतों का भी कोई नहीं दे रहे। बुतों को भी ये कुछ समझ के नहीं पूज रहे, ये अपने बाप दादा की अंधी तकलीद पे कर रहे हैं। और हकीकत है आज भी दुनिया में जो शिर्क है ना, उसमें अक्सरियत का शिर्क सिर्फ तकलीदी शिर्क है। जैसे आज बहुत सारे मुसलमान तकलीदी मुसलमान बन चुके हैं ना, रस्मी मुसलमान, रिवाजी मुसलमान, इसी तरह बहुत सारे मुशरिक और काफिर भी तकलीदी काफिर हैं, तकलीदी मुशरिक हैं। वक्त और मुआशरे ने उनको मुशरिक बना दिया। इसलिए फरमाया कि ये सब जो कुछ कर रहे हैं, आप इससे ये मत सोचिए कि ये पढ़े लिखे मुशरिक हैं या अनपढ़ मुशरिक हैं। तकलीद का फंदा इन्होंने गले में डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये आम काम कर रहे हैं। लिहाजा आप इग्नोर करें, ओवरलुक करें इनको, क्योंकि वह इन नाला मुवफ्फूहुम नसीबहुम, और यकीनन हम देने वाले हैं इनको इनका हिस्सा। यानी डोंट वरी, इनका इंजाम आपके हाथ में नहीं है, हम इनको देंगे। और जरा शिद्दत तो देखिए, इन ना, नून के ऊपर शद है ना ये, फिर मुवफ्फू हम से पहले लाम जो है ना, लाम, ये लाम ताकीद कहलाती है अरबी में, एम्फेसाइज किया गया। फिर उसके बाद देखिए मुवफ्फू हम, ये जो वफ्फू के फा के ऊपर शद है ना, ये भी है शिद्दत की। कितनी ताकीदें जमा हो गई, वाह, फिर इन्ना, फिर लाम, फिर फा के ऊपर शद, और फिर आगे देखिए लफ्ज होम, इसकी जरूरत भी नहीं थी। ऐसे भी कहा जा सकता था और बेशक हम देने वाले हैं इनको सजा, या हम देंगे सजा, हम ना भी कहा जाता, लेकिन फिर हम कहा गया। ये एक ऐसी है जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है अभी मैं पकड़ती हूँ, अभी मारती हूँ मैं, और एक सूरत है कहती है अभी मैं तुमको मारती हूँ, अभी मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। तो 4 ताकीदों के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं हम अलबत्ता पूरा देंगे इनको नसीब हम, इनका हिस्सा। असल नसीब तो इनका अब ये मिलने वाला इनको, और नसीब कहते हैं मखसूस हिस्सा, नसब, गड़ा हुआ। ये जो हमारा नसीब है ना, ये भी गड़ा हुआ है। उर्दू में कहते हैं ना झंडा नसब कर दिया, कि आज अब इनको पूरे हिस्से देंगे। दुनिया में तो इनके गुनाहों पे जो इनकी पकड़ थी ये बड़ी लाइट सी थी, हमने तो इनको बड़ा सॉफ्ट लिया हुआ था, असल में तो अब इनको मिलेगा और कैसा, गैर मनकूस, बगैर कुछ कमी किए, बगैर किसी नक्स के। और तुम्हें बोलते लफ्ज नक्स, इसके ऑपोजिट लफ्ज क्या ऊपर गुजरा जन्नत के लिए, गैर मजजूस, वहां लाजवाल नेमते हैं और यहाँ गैर मनकूस, कोई कमी नहीं करेंगे इनकी सजा में, पकड़ पकड़ के बदले देंगे, गिन गिन के बदले देंगे इनकी सरकशियों को, इनकी बगावतों को, इनकी नफ्स परस्तियों को और इनकी अना परस्तियों को आज गिनेंगे। क्योंकि कुरान में पहले भी आ चुका है कि वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस तरह अल्लाह ने गिन गिन के नेकियों के बदले देने हैं ना, इसी तरह गिन गिन के गुनाहों के बदले भी देने हैं। हम सोचते हैं कि जो गुनाह हम भूल गए अल्लाह भी भूल गया, अच्छा वो 4 साल पहले की बात हो ख़त्म, आपके मेरे नाम से ख़त्म है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। देखिए कभी ऐसा होता है कि आपने किसी से लेन देन किया होता है रुपए पैसे का, आपको याद रहता है कि मैंने 1,000 दिया हुआ है, 500 ऊपर थे और शायद 20 पाउंड भी थे ऊपर, कुछ अरसा आप याद रखते हैं, कहीं आपने लिखा होता है, लिख के भी रखा हुआ, रख के भूल गए, कुछ अरसे के बाद वो आपको कहता है ये ले दिए 1,000 पाउंड, 1,000 दे दिया आपको, बाकी बाद में दे दूंगा। फिर 1-2 महीने साल के बाद वो आपको ऊपर के 500 भी दे देता है। अब क्या होता है, आपके जिन से निकल जाता है कि चलो बिग अमाउंट तो उसने दे दी, 1,000 भी दे दिया, 500 भी दे दिया, वो ऊपर के 20 पाउंड जिन में नहीं रहे, 4-5 साल गुजर गए। अब उसके बाद क्या होता है, किसी दिन वो पूछता है मैंने आपसे कुछ देना तो नहीं पीछे, आप कहते नहीं मेरा ख्याल है दे दी, जिन से निकल जाती है ना, फिर हम कहते हैं चलो कहा सुना माफ़, अगर मैंने देने तो आप माफ़ कर दें, आपने देने तो मैंने माफ़ कर दें। अब आपके जहनों से निकल गया, लेकिन अगर उस किसी दिन सफाई के दौरान पर्चा निकल आया कि उसने 1,000 लिया था दे दिया, 500 लिया था दे दिया, 20 पाउंड अभी उसके नाम पे, अब उस लिखे को आप झुटला सकते हैं? क़यामत के दिन कुल्ला इंसान अल्ज़म ना हो तायरहु फी उनुक्की, हर इंसान का नाम माल उसकी गर्दन में लगा हुआ। अभी आगे पढ़ने वाले हैं सूरह बनी इसराइल के, शुरू में पढ़ लेंगे, और सब चीज़ों को उसमें अल्लाह लिखवा रहे हैं, कुल इंसान नलजम ना तो आई रफी उनके, हाँ वनुफ्रिजुलहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन निकालेंगे किताब यलकाहु मंशूरा, एक किताब की सूरत में जो नशर की जाएगी और कहा जाएगा इकरा किताबक, पढ़ो अपनी किताब को, कफा बि नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज के दिन तुम अपना हिसाब लेने के लिए खुद काफ़ी हो। अब वहाँ गैर मनकूज, लिखिए ज़रा मेरी मस्तियाँ, बल्कि मेरी खरमस्तियाँ अगर हैं तो अल्लाह उसके भी पूरे पूरे बदले देगा। हम क्या चाहते हैं, नेकियों के मामले में अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ देने के मामले में, अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा करने पैसे देने के मामले में अल्लाह की याददाश्त बड़ी तेज़ हो, गिन गिन के दे बल्कि बेहिसाब दे, और जब बात हो गुनाहों की तो हम कहते हैं अल्लाह ओवरलुक कर दे, वो भूल ही जाए, फरिश्ते तो याद ही ना रखे। तो कहा गैर मनकूस, नक्स डाले बगैर हम तुम्हें देंगे, तो इतना कड़ा हिसाब है। हदीस है बेसिकली बड़ी खूबसूरत मेरे जहन में फिर आ गई कि एक मौके पे आपने अबू ज़र गफ़ारी को कहा था, क्या अबू ज़र गफ़ारी कमर को बांध लो, क्योंकि सफ़र बड़ा गहरा है, सुनाऊंगी कहीं आगे जाके रेफरेंस के साथ, कश्ती मजबूत कर लो, समंदर बड़ा गहरा है, और अपना मुहासबा कर लो, क्योंकि हिसाब लेने वाली ज़ात बड़ी बारीक बीन है, तो वो बड़ी डीप डाउन क्लीनिंग करेगा हमारे अमाल की। ऐसे ही नहीं थी आयतें जिन्होंने अल्लाह के नबी को बूढ़ा कर दिया था, इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इसमें तवज्जो दिलाते हैं कि अपनी फ़िक्र करो, गौर करो, गैर मनकूस की सूरत में तुम्हें भी तुम्हारे गलत काम, तुम्हारी गलत चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो उस दिन ना कहना कि हमें पता ही नहीं चला। और इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीच में सिर्फ साइड की बात करके उसकी वजह आगे बताऊंगी, आयत 110 को देखिएगा, वलकद आतैना मूसा अल-किताब फख्तलिफा फीह, और मूसा को हमने किताब दी थी फिर उसमें इख्तलाफ पैदा कर दिए गए, यानी अपने दौर में मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी, कौन सी किताब थी, तौरात है, फिर क्या हुआ, लोगों ने उसमें इख्तलाफ किया, ये नहीं लिखा इख्तलाफ किया लोगों ने, फख्तलिफा मजहूल पैसिव वॉइस, बस उसमें भी इख्तलाफ किए गए। कब इख्तलाफ होते हैं किताबों में, जब कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते, देखिए, इख्तलाफ की बुनियादी वजह क्या है? कुछ लोग कहते हैं मान लो, अमल कर लो, कुछ नहीं मानते, इख्तलाफ हो गया ना। बस आप देखिए कि आपसे कहा जाता है कि आप लोग कल से 9 बजे यहाँ आए। अगर आप सब कहते हैं ठीक है, तो आप सब 9 बजे आने शुरू हो गए, तो कोई इख्तलाफ होगा? इख्तलाफ कब होगा? आधे लोग कहते हैं ठीक है आएंगे, और आधे कहते हैं नहीं आ सकते। तो जब कौमें, कौम के लोग दीन की बातों, किताबों को कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, तो दूसरे नॉन मुस्लिम भी हैरान होकर देखते हैं कि कौन सच्चा कौन झूठा है। एक तो ऐसे हाल हुलिये में फिरता है, फिर भी कहता है अल्लाह गफूर रहीम है, दूसरे ने सर से पांव तक अपने आप को छुपाया हुआ है, किसको मानो किसको ना माने। ठीक है, तो इख्तलाफ जो है वो कब होता है कि जब हर सुनने वाला बात को अपनी मर्जी से सुन रहा होता है। ये मेरे लिए नहीं हुक्म, बस बाकियों के लिए। ये रूल मेरे लिए कैसे हो सकता है? सॉरी, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह आप देखिए कि हर सुनने वाला अपनी राय कायम करता है, जज करते हैं। कुछ लोग सुन के कहते हैं इट्स ओके, अकल को पीछे डाल दो, मैंने मानना है ये रूल। कुछ उस वक्त तावीलें सूझ रही होती हैं उनको, मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं, आई कैन डू दिस दिस दिस। नतीजा क्या होता है कि उनकी एक राय कायम हो जाती है। किसी बात को संजीदगी से कोई सुनता है ना, तो उस पर उसकी राय भी मजबूत होती है। नेक नियति से जब लोग बात को सुनते हैं ना, तो बात मानने की तौफीक मिलती है। लेकिन जब बदनीयती से सुने, ग्रज के साथ सुने, एग्रेशन के साथ सुने, ये बड़ी मुसीबत है, ये बड़ा दीन का हुक्म सख्त आ गया है। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स रखने वाले दीन के अंदर फिर इख्तलाफ करते हैं, और नबियों के सामने भी ऐसा हुआ। तो आप कह लीजिए कि फख तुलिफाहा से मुराद जहां उनका गैर संजीदा होना है, और वो गैर संजीदा हो गए। इसी तरह इख्तलाफ होने की एक वजह क्या होती है कि लोगों की राय फर्क होती है। मैं आपसे पूछूं, सर्दी तो नहीं लग रही है आपको? कुछ लोग कहेंगे सर्दी नहीं लग रही, कुछ कहेंगे लगेंगी। हर एक की जिस्मानी और उसके कपड़ों की कैफियत फर्क है ना। इसी तरह जब लोगों की राय डिफरेंट होती है ना, तो लोगों को इख्तलाफ आता है। करें क्या? इख्तलाफात में कौन सी चीज़ लोगों को जोड़ती है? आज सिर्फ एक ही बता सकती हूँ, बाकी फिर तरबियती सेशन पे भी, लास्ट वीक मैंने 2-3 वीक पहले इस पर एक ऑनलाइन सेशन दिया था, तो उसमें 5 चीज़ें बताई थी। लेकिन आज सिर्फ इतनी बात समझ लें, क्योंकि उम्मत की बात आ रही है, मकसद की यकसानियत। सेम गोल जब होता है ना लोगों का, तो वो जुड़े रहते हैं। राय में इख्तलाफ होगा, अमल में इख्तलाफ होगा, क्वालिटी में फ़र्क होगा, गलतियां भी होंगी, लेकिन लोग जुड़े रहेंगे, क्योंकि सबका गोल एक है। और गोल को देखना है तो बॉल को देख लें। फुटबॉल का जब गेम हो रहा होता है, तो सब लोग एक गोल के पीछे भाग रहे होते हैं ना, सबकी कारकर्दगी फ़र्क है, लेकिन वो एंड तक गेम खेलते हैं, क्योंकि एक ही बॉल के साथ है। और अगर किसी ग्राउंड में एक की बजाय 2 गेंद डाल दिए जाएं, तो आपको पता क्या होगा? कभी फैसला ही नहीं हो पाएगा। आधे लोग एक गेंद के पीछे भाग रहे हैं, आधे दूसरे के पीछे। बंदे मोमिन जो होता है ना, जो नबी की उम्मत का एक खूबसूरत शख्स होता है ना, उसका गोल क्या होता है कि मैंने जहन्नम से बच के जन्नत में जाना है, और ना सिर्फ खुद बचना है बल्कि दूसरों को भी लेके जाना है। ये गोल लेके जब लोग कुरान सुनते हैं और किताबें सुनते हैं ना, तो जुड़े रहते हैं। ये किताब सब सीखने के मकसद में बैठते हैं ना, तो इत्तेहाद होता है, अपनी इसलाह और उसके बाद दूसरों की मदद। इस गोल पे ताल्लुक जुड़ते हैं, साथियों के साथियों से, तालिब इल्मों के तालिब इल्मों के साथ, उस्तादों के शागिर्दों से, शागिर्दों के उस्तादों से। हुस्ने ज़न कायम रहता है उस्तादों पे भी, वरना लोग बदगुमान हो जाते हैं, और आपस में साथियों के साथ तो बहुत ही होता है। जब एतराज़ के जहन से लोग सुनते हैं ना, तो कीड़े निकालते हैं, ये होगा वो होगा, तो नुकसान क्या होता है? फख तुलीफा फी। यही उस दौर में हुआ, आज उम्मत को बड़े से लेके छोटे लेवल पे कर लीजिए, यही होता है। आप इसको घरेलू जिंदगी से समझिए। बस अब शौहर और बीवी के मिजाज में बहुत इख्तलाफ होता है, मिजाज ही नहीं मिलते, लेकिन आपको पता है कि कैसे घर बना ही रह जाता है? बच्चे बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटीज सारी जिंदगी साथ गुजार देती हैं, क्या अब क्या करें, बच्चे जो हैं। और कितने झगड़े शौहर बीवी के बिल आखिर बच्चों पे आके सॉल्व होते हैं। तो बच्चा एक कॉमन कॉज है ना, ये लोगों को जोड़ देती है। जब एक बंदा बच्चे की जगह पे लिख ले अपनी इसलाह और उम्मत का मकसद, तो फिर कभी इख्तलाफ नहीं करेगा, फिर कभी पाँव नहीं पटकेगा, कभी फिर अपने आप को दूसरी तरफ नहीं रखेगा। तो जब नबियों की दावत में इख्तलाफ हो गया तो आज के दौर में क्यों नहीं होगा? हर दौर में लोग इख्तलाफ करेंगे, लोग एक दीनदार से कोई बात सुनेंगे तो दूसरे से आके उसकी रिकन्फर्मेशन चाहते हैं। क्या इसलिए कि मान जाए? मानते नहीं है, इसलिए करते हैं कि जरा अब हम और कुछ चार बातें सुन के उस बंदे के खिलाफ और बातें करें। क्या आज के दौर में उम्मत मुख्तलिफ गिरोहों का शिकार है, फिरकों का है, तो क्या ये भी फख्त लिफाफ ही है? 110% यही है। देखिए, सहाबा कराम में भी इख्तलाफ राय था। आप कुरान भी तो पढ़ चुके हैं, सूरत अनफाल में, तौबा में, अबू बकर और उमर की राय में कितना इख्तलाफ होता था। मिजाज का फ़र्क, पर्सनैलिटी का फ़र्क, राय का फ़र्क। आप तफसीर खोल के पढ़े, मैं आपको क्या पता कितनी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके फिर मैं आपको अंदर से एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। आप तफसीर इब्ने अब्बास उठा के देख लें, उसमें जो राय होती है तफसीर इब्ने मसूद में वो नहीं होती। इख्तलाफ था, लेकिन इतने इख्तलाफात के बावजूद सहाबा एक क्यों थे? नबी सल्लम की ज़िंदगी में ही धड़ेबाजी और सट्टेबाजी और गिरोहबाजी क्यों नहीं हुई? होना तो ये चाहिए था ना कि आपकी ज़िंदगी में अबू बकर के नाम का एक फ़िरका आ जाता, अबू बकरी, उमरी फ़िरका, उस्मानी फ़िरका, अलीवी फ़िरका। नहीं आया। वजह क्या है? ये जुमला लिख लीजिए जो बोलने लगी हूँ, शऊर से लिखिएगा कि सहाबा में इख्तलाफ राय तो था लेकिन उनकी अकीदत का मरकज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह का दीन था। सारे इख्तलाफात के बाद वो अपनी राय वापस ले लेते थे जब अल्लाह के नबी की बात सामने आ जाती थी, दलील आ जाती थी। बीसियों मिसालें इस पे मैंने कई दफ़ा दर्स दी हैं ऐसी जगहों पे कि जहाँ लोग दीन से ताल्लुक़ रखते थे। जब लोग नबी की बात सुन के अपनी राय को नीचे कर लेते थे तो इख्तलाफ ख़त्म। बात वाज़े, जंगे बदर के कैदियों का मसला देख लीजिए, आप रिसेंटली पढ़ के आए हैं। अबू बकर की राय क्या थी? कि इनको छोड़ दिया जाए और इनका रैंसम ले के उससे इस्लाम को फ़ायदा दिया जाए, फ़दिया लिया जाए। हज़रत उमर की राय क्या थी? बिल्कुल भी नहीं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, इनके सर कलम किए जाए ताकि ये फितने ख़त्म हो जाएं। अब ये दोनों की राय थी, अबू बकर भी राय दे के चले गए, उमर भी दे के चले गए। अल्लाह के नबी का अपना मेलान भी अबू बकर की राय के साथ था। और अब उमर फारूक कहते हैं कि थोड़े अरसे के बाद मैं वहाँ से जब गुज़रा तो देखा कि अबू बकर भी रो रहे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं। उनको देख कर मैं भी रोने लगा। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी बताएं क्या बात है, मुझे वजह समझ आए ना आए, मैं आपको देख के मैं भी रोऊं, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा वही आयत नाजिल होगी जो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिक, कि अगर ये आपके रब की तरफ से पहले से डिसाइड ना होता तो आज अल्लाह इस फैसले पे सबको पकड़ लेता। यानी उमर की राय सच थी, अबू बकर की राय और नबी सल्लम की राय दबी हुई थी, तो कुरान की आयत ने फैसला कर दिया ना। बात समझ रहे हैं? जब सही हक की बात सामने आ जाती थी तो लोग रुकते थे। आज उम्मत में इख्तलाफ क्यों हुआ? हमारी अकीदतों के मरकज बदल गए। कहने को अल्लाह और उसका रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अकीदत किसी को इमाम अबू हनीफा से ज्यादा हो गई, तो किसी को इमाम शाफी से हो गई, तो किसी को इमाम मालिक से, और किसी को इमाम अहमद बिन हम्बल से हो गई। बस इतनी सी बात है, इसको समझ लें तो बात काफी समझ आ जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फख्तलिफा फी वलौल कलिमतुन सबकत मिन रब्बिक लकुदिया बैनहुम, वही जुमला यहाँ भी आ गया। और अगर तय न हो चुकी होती एक बात आपके रब की तरफ से पहले से तो इनके दरमियान फैसला कर दिया जाता। ये कौन सी बात थी कि अल्लाह मोहलत देता, एकदम नहीं पकड़ता, वरना इस इख्तलाफ पे फौरन उम्मतों को पकड़ लिया जाता। वइन्नहुम लफी शक के मिन्हु मुरीब, और अब तो ये लोग इस तौरात के बारे में उलझा देने वाले शक में मुबतला हो गए हैं। सूरत शुरा में ये बात बड़ी डिटेल से आएगी कि हर रसूल की उम्मत अपनी इल्हामी किताब की वारिस होती है, लेकिन जब उम्मत पर जवाल आता है तो अपनी किताब के बारे में भी शकुक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं, हत्ता कि ये तक कहने लग जाते हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ अल्लाह के नबी को ये बात क्यों समझाई? ये बीच में हजरत मूसा के लिए एक आयत क्यों आई? क्योंकि इन्नहु लफी शक के मिन्हु, अल्लाह के नबी के साथ कुछ इसी किस्म के हालात चल रहे थे कि लोग आपकी दावत पे मुसलसल शक पैदा कर रहे थे, मुरीब, कुलक पैदा करने वाला शक। अल्लाह ताला का एक फैसला है, और वो क्या कि हर इंसान को इख्तियार दिया हुआ है, चॉइस। ये जो लौला कलिमतुन सबकत है ना, ये क्या बात है? वो ये बात है कि हर बंदे को अल्लाह ने चॉइस दी है, हक को सीखे या ना सीखे, अमल अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन बिलाखिर लखुदिया बैनहुम, आखिर में उनका फैसला होने वाला है। तो लिहाजा इन्नहुम लफी शक के मिनहु कहकर, शक की बात करके अब अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि आप इनको छोड़ दें, ये दीन को मुखालिफ रुख से देख रहे हैं, इसलिए इनको आपके दीन में शक है। देखिए आप छोटी सी मिसाल समझें तो शायद बात मैं समझा पाऊँ। गाड़ी में जब बैठते हैं आप रात को ड्राइविंग सीट पे, तो आप अपनी हेडलाइट्स खोलते हैं ना, क्यों खोलते हैं? ताकि आपको आगे रास्ता दिखे और उस रोशनी में आप रास्ता देखते हैं, ठीक है। लेकिन ऑपोजिट वे से आने वाली गाड़ी या उसके ड्राइवर को वही लाइट चुभती है, वही लाइट जो आपको रास्ता दिखा रही थी वो दूसरे की आंखें क्यों चुंधिया रही है? क्योंकि वो मुखालिफ सिमत से देख रहा है। दीने इस्लाम की गाड़ी में बैठकर जब आप दीने इस्लाम के अहकाम देखते हैं ना, तो ये आपको गाइड करते हैं, और जब आप इसको अपोजिट रुख से देखते हैं तो ये शक पैदा करते हैं। आज इंसानियत को जो शक दिया जा रहा है ना इस्लाम और नबी सल्लम की दावत पे, वो यही है कि इस्लाम के अगेंस्ट बातें की जाती हैं, क्योंकि उनके पास खुद भी इस्लाम नहीं है।